दिन भर तारीख 17 जून दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। अहमदाबाद के गुलबर्ग कांड में अदालत ने सुनाई 11 को उम्र कैद, 12 को 7 साल और 1 को 10 साल जेल की सजा। जकिया जाफरी बोली,
मुझे इंसाफ के बराबर नहीं मिला। मैं 15 साल से इंतजार कर रही थी कि मेरा इंसाफ होगा, मेरा इंसाफ होगा, जबकि मैंने सब अपनी आंखों से देखा है कितनी सबको तकलीफें हुई।
कैराना में बीजेपी विधायक संगीत सोम निकालना चाहते थे निर्भय यात्रा, पुलिस ने रोका। चलो रियो में आज 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत के हॉकी में लगातार 5वां स्वर्ण जीतने की कहानी।
1952 के रिकॉर्ड है जो कि सेमीफाइनल फाइनल में 9 में से 8 गोल और फाइनल में 6 में से 5 गोल।
पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। गुजरात के गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 12 दोषियों को 7 वर्ष जबकि एक अन्य दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा हुई है। वर्ष 2002 में हुए इस हत्याकांड में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 मुसलमान मारे गए थे। एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी ने अदालत के फैसले पर असंतोष जताया है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में प्रशासन ने निषेधाज्ञा लगा दी है और कैराना से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम ने अपने समर्थकों के साथ प्रस्तावित कैराना यात्रा स्थगित कर दी है। संगीत सोम ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि वो उन लोगों को कैराना वापस लेकर आए जो कथित तौर पर पलायन कर गए हैं। अमरीकी विदेश विभाग के 50 से ज्यादा अधिकारियों ने एक आंतरिक मेमो पर दस्तखत किए हैं जिसमें सीरिया को लेकर ओबामा प्रशासन की नीति की आलोचना की गई है। इस मेमो पर दस्तखत करने वाले अधिकारियों का कहना है कि संघर्ष विराम को लागू कराने के लिए अमरीका को सीरियाई राष्ट्रपति असद की सरकार के खिलाफ सैन्य हमले करना चाहिए। डेनमार्क की यात्रा पर गए अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि यह वैधानिक तरीका है, मैं इस प्रक्रिया का सम्मान करता हूं। अमेरिका लौटने पर मैं इस बारे में लोगों से बात जरूर करूंगा। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें सीरिया में विपक्ष के एक हिस्से को मौजूदा सरकार में जगह देने की बात कही गई है। पुतिन ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद राजनीतिक प्रक्रिया की जरूरत पर सहमत हैं। इससे पहले रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि सीरिया के सरकारी सैनिकों पर हमले से बात बिगड़ सकती है। मिस्र के जांच अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें पिछले महीने भूमध्य सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुए इजिप्ट एयर विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल गया है। दुर्घटनाग्रस्त हुआ यह विमान पेरिस से काहिरा जा रहा था। दुर्घटना की वजह से इस विमान में सवार सभी 66 लोग मारे गए थे। एक दिन पहले ही अधिकारियों ने कहा था कि उन्हें इस विमान का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है जिसे काफी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोरखम सीमा चौकी पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि लड़ाई के कारण सीमा चौकी को बंद कर दिया गया है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि इससे कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। पिछले हफ्ते रात के वक्त हुए संघर्ष में 7 लोग मारे गए थे। बुधवार को संघर्ष विराम की घोषणा कर दी गई लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। दोनों पक्ष इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इराकी सेना ने कहा है कि उसने फलूजा शहर की प्रमुख इमारतों को इस्लामिक स्टेट के चंगुल से छुड़ा लिया है। फलूजा की प्रमुख इमारतों पर इराक का ध्वज फहराया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। लगभग 1.5 दशक से जिस फैसले का इंतजार था आखिरकार वो आज आ गया। मामला था 28 फरवरी 2002 को गुजरात के अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में हुई 69 हत्याओं का। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने इस मामले में 11 को उम्र कैद, 12 को 7 साल जेल और एक दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत में इस बात पर भी बहस हुई कि 11 दोषियों को उम्र कैद में कितने साल की सजा दी जाए। हालांकि अदालत ने सजा में मौत तक कैद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। जिन 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उनमें से 9 2002 से ही जेल में बंद हैं। जब फैसला आया तो हमारे सहयोगी अंकुर जैन अदालत परिसर में ही मौजूद थे। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले को सभ्य समाज के इतिहास का सबसे काला दिन करार देते हुए अहमदाबाद की विशेष अदालत ने आज इस मामले में सजा सुनाई। वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा के दौरान कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोगों को गुलबर्ग सोसाइटी में जिंदा जला देने के मामले में आज 11 दोषियों को उम्र कैद, 12 को 7 साल और एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने इस महीने की 2 तारीख को इस केस में अपना पहला फैसला सुनाते हुए 36 लोगों को बरी किया था और 24 को दोषी ठहराया था। इस केस की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही थी। सिट के वकील आरसी कोडेकर का कहना है कि इस मामले में जज ने सजा देते वक्त उदारता दिखाई है। कोडेकर ने कहा,
ये हमारे मुताबिक बहुत कम सजा है, तो इनके सामने हम अपील करेंगे।
कम सजा के कारण क्या रहे, जज के सामने क्या था?
उन्होंने लीनियंसी बताई है, ज्यादा वो समझे कि उन्होंने उदारता बताई है। उदारता इसमें बताने जैसी नहीं थी, उदारता बताने का कोई कारण ही नहीं है। जब आप केस मानते हो कि रायोटिंग के हिस्सा थे, तो इनको सजा ज्यादा से ज्यादा दे देनी चाहिए।
फैसले के तुरंत बाद आज कोर्ट के बाहर अभियुक्तों के परिवार वाले रोते रोते पुलिस और न्याय तंत्र की आलोचना करने लगे। सभी का कहना था कि पुलिस ने इस मामले में असली गुनहगारों को छोड़ गरीबों को पकड़ लिया। पुष्पा और भरत के भाई लखन चुड़ासमा को सिट ने 2008 में गिरफ्तार किया था। आज उन्हें इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लखन गुलबर्ग सोसाइटी के आसपास रिक्शा चलाने का काम करते हैं। पुष्पा और भरत का कहना है,
उसको ये 300 दिवस सुनाई, ये गलत है।
हम तो
सरकार से न्याय मांगते
हैं,
ऐसा नहीं बोलते। हम तो यही बोलते, हमको सरकार से न्याय चाहिए बस। जिसको जो बड़ा माता था उसको घुसाओ, जो पूछ वाले थे उसको बेचारे को अंदर घुसा दिए, ये कैसा।
वही एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने कहा कि फैसले में उन्हें न्याय नहीं मिला है और उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वही जाकिया जाफरी के वकील एसएम वोरा ने इस मामले में एसआईटी पर कमजोर जांच का आरोप लगाया और कहा कि दंगों के पीछे की साजिश को जांच में नजरअंदाज कर दिया गया।
69 डेथ, 69 आदमी मारे गए हैं, उसमें 36 आदमी को छोड़ दिया गया। उसी वक्त से हमने अपील का निर्णय ले लिया है। आज फिर जो सजा का जो सुनवाई हुई है, उससे भी हमें और लगा कि इस मामले में भी हमें शायद अपील करनी।
गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड 2002 गुजरात दंगों का 8वां ऐसा केस है जिसमें सिट इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई हो। आज के फैसले से केस से जुड़े सभी लोग असंतुष्ट थे। अब मामला गुजरात हाई कोर्ट जाएगा। इस केस के बाद अगला फैसला नरोड़ा गांव मामले में आना है, जिसमें 86 लोगों पर 2002 दंगों के वक्त 11 लोगों को मारने का आरोप है। अंकुर जैन, बीबीसी अहमदाबाद।
इस गुलबर्ग हत्याकांड में पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी मारे गए थे। उनकी पत्नी जकिया जाफरी ने इस मामले को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी। वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है।
मुझे तो ये फैसला बराबर नहीं लगा, मैं उससे संतोष नहीं हुई। 15 वर्ष हो गए मुझे, उसके अंदर भी उसके अंदर कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों को नहीं मिली सजा। ये गलत बात है ना। मैं तो सब टोले के टोले सभी लोग थे, तो उसके अंदर छोड़ दिया उन्होंने, आधों को छोड़ा आधों को सजा दी।
जकिया जी, 15 साल हो गए
जी। हाँ, 15
साल में हिंदुस्तान कितना बदल गया?
बहुत बदल गया। देखिए अब कैसा बदल गया कि मुझे इंसाफ भी बराबर नहीं मिला। मैं 15 साल से इंतजार कर रही थी कि मेरा इंसाफ होगा, मेरा इंसाफ होगा। जबकि मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, कितनी सबको तकलीफें हुई, सब घर के बेघर हो गए, सब इतने लोग थे। अभी आप जाके देखो, आपको वहाँ पर इनकी हड्डियाँ मिलेगी। सब घर से बेघर है और आधे लोग उसके अंदर मर गए।
जकिया जाफरी से पूरी बातचीत हम आपको सुनाएंगे घटना चक्र कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के कैराना में हिंदुओं के कथित पलायन को लेकर सियासत जारी है। 2 दिन पहले सांसदों के दल वहां जमीनी हकीकत की पड़ताल करने गए, तो अब नेताओं की यात्राओं का दौर शुरू हो गया। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने अपने समर्थकों के साथ निर्भय यात्रा शुरू की, लेकिन इसे ज्यादा दूर तक पुलिस ने जाने नहीं दिया। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी सद्भावना यात्रा निकाली। कैराना को लेकर आज क्या कुछ हुआ, सुनिए सलमान रावी से।
सुबह से ही सरदना में भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम के घर के बाहर समर्थकों का हुजूम था। कैराना तक होने वाली उनकी निर्भय यात्रा को प्रशासन ने सरदना से 2 किलोमीटर आगे ही रोक दिया था और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। प्रशासन के अधिकारियों ने संगीत सोम को बताया कि इलाके में निषेध आज्ञा लागू है और वो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे सकते। रोके जाने के बाद संगीत सोम ने कहा कि उन्होंने कैराना से पलायन कर जा चुके लोगों को वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने 15 दिनों का अल्टीमेटम रखा है।
हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, या तो 15 दिन में सरकार जो लोग पलायन किए हैं उनकी वापसी कराए, नहीं तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। कल से कह रहे हैं कि हम कानून का पालन करेंगे, कानून तोड़ने का पालन नहीं करेंगे। हमें यहाँ अधिकारियों ने बताया, सीनियर अधिकारियों ने नोटिस की कॉपी दी कि आगे धारा 144 लगी हुई है, आप यहाँ से आगे मत जाइए। हमने कानून का पालन करते हुए यात्रा स्थगित की है, लेकिन 15 दिन के अल्टीमेटम के साथ अगर 15 दिन में लोगों का पलायन वापसी नहीं हुआ, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैराना नहीं, कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये चेतावनी के साथ।
संगीत सोम की यात्रा को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और शामली जिलों में प्रशासन ने निषेध आज्ञा पहले ही लागू कर दी थी और शामली की सीमाओं को भी सील कर दिया था। समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान भी शुक्रवार को ही सद्भावना यात्रा निकालने वाले थे। इससे पहले गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक दल भी सांसद हुकुम सिंह के आरोपों की जांच करने कैराना पहुंचा। गुरुवार को ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के दल भी जांच के लिए कैराना गए। इस दल में वाम पार्टियों सहित प्रमुख विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल थे। जांच के बाद लौटे जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी का कहना था,
जो भाजपा उसके सांसद और उसके नेता जो कहते हैं कि ये किसी सांप्रदायिक घटना का हिस्सा है या उसकी वजह से पलायन हुआ है, चोरी को अब श्री हुकम सिंह खुद नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी कष्ट की बात यह है कि लोकल कोई एमपी कोई इल्जाम लगाते हैं तो ठीक है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इलाहाबाद में इसे मुख्य मुद्दा बना लिया।
वहीं बहुजन समाज पार्टी के सुधींद्र भदौरिया ने कैराना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा,
गंगा और जमुना की जो तहजीब है, जो मिली जुली तहजीब है, जिसमें ये सैकड़ों वर्षों से लोग साथ रहे हैं, वहाँ पर ये आग लगाने की यात्रा से निकले हैं। और मैं समझता हूँ कि इस पर मुलायम सिंह जी की पार्टी अगर सख्ती से कार्रवाई नहीं करती है, तो जो हमारा आरोप है कि ये इन दोनों लोगों की मिलीभगत से हो रहा है, उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये सब सही साबित होगा।
निर्भय यात्रा शुक्रवार को तो रोक दी गई, मगर संगीत सोम के 15 दिनों के अल्टीमेटम के बीच भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया है कि कैराना में फिलहाल उनकी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
इस बार इसी पर है इंडिया बोल।
बीबीसी इंडिया बोल। क्या है कैराना का सच? उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले अचानक कैराना से पलायन का मुद्दा क्यों उछला? क्या वाकई वहां दो समुदायों के बीच तनाव है, या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में वोट हासिल करने की ये एक रणनीति है? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 18 जून शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
चलो रियो में आज सुनिए 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत के हॉकी में लगातार 5वां स्वर्ण पदक जीतने की कहानी, और किस तरह पहलवान केडी जाधव का उनके गांव में स्वागत हुआ जब वो हेलसिंकी से कांस्य पदक जीतकर भारत वापस लौटे। बता रहे हैं रेहान फजल चलो रियो की चौथी कड़ी में।
चलो रियो।
चलो रियो में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। एक शख्स 1924 के ओलंपिक खेलों में नौकायन में अमेरिका की नुमाइंदगी करने के लिए चुना जाता है, और वो सिर्फ इस कारण टीम का हिस्सा बनने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे अपनी गर्भवती पत्नी के साथ रहना है जो उसके पहले बेटे को जन्म देने वाली है। 28 साल बाद उसका वही बेटा फ्रैंक हेवेंस न सिर्फ हेलसिंकी ओलंपिक में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि कैनोइंग की 10,000 मीटर कैनेडियन सिंगल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीतता है। हेलसिंकी में हुए 1952 के ओलंपिक खेलों में 40 सालों बाद सोवियत संघ की वापसी हुई थी। चीन की एकमात्र तैराक वू चुआन यू इन खेलों में भाग लेने पहुंची थी और ओलंपिक मशाल जलाई थी फिनलैंड के दो महान एथलीटों पावो नूर्मी और हेंस कोल मैनन ने।
The modern ceremony starts with a parade of national contingents in alphabetical order, the Finnish alphabet that is. Here on the heels of the Vietnam aggregation comes Udis Vallet, the United States to you.
Thank you.
Norman Armitage, veteran New York fencer, carries the stars and stripes as the crowd of 70,000 lets out a welcoming roar. On the scoreboard, behind the marching delegations, is the Olympic motto, Citius Altius Fortius, faster, higher, stronger. The contestants march once around the stadium and then mass on the field before the Tribune of Honor. Now out of the past come the flying feet of Paavo Nurmi, Finland's six-time winner of Olympic titles, bearing the torch that will light the Olympic flame.
1952 के ओलंपिक खेलों में भारत की हॉकी टीम के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। भारत ने अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत ऑस्ट्रिया को 4-0 से हरा कर की, लेकिन टीम का प्रदर्शन बिखरा बिखरा सा था और कई जगह लिखा गया कि भारतीय हॉकी टीम वो धार खो चुकी है जिसकी वजह से उसे ओलंपिक खेलों में अब तक 4 स्वर्ण पदक मिले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने 18 जुलाई 1952 के अंक में लिखा,
चैंपियन जीते जैसा कि उनसे उम्मीद थी, लेकिन ऑस्ट्रिया उनके लिए आसान प्रतिद्वंदी नहीं था, खासतौर से उस मैदान पर जो बारिश की वजह से फिसलन भरा हो गया था।
भारतीय खेमे में बेचैनी का अंदाजा पंकज गुप्ता के उस बयान से लगाया जा सकता है जो उन्होंने ब्रिटेन के साथ हुए सेमीफाइनल के ठीक पहले दिया था।
मैं चाहता हूं लड़कों कि तुम अपना प्राकृतिक खेल खेलो, देखते ही गेंद क्लियर करो, छोटे छोटे पास दो और तेज हमले करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा असली खेल क्या है, दिखावे वाली हॉकी से तुम्हें परहेज करना होगा।
ब्रिटेन के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत बदली हुई टीम थी, उसने बहुत आसानी से ब्रिटेन को 3-1 से हराया। बाद में टीम के सेंटर फॉरवर्ड बलबीर सिंह ने अपनी आत्मकथा द गोल्डन हैट्रिक में लिखा,
हम बेरोक टोक तेजी से आगे बढ़े और हमने उनके रक्षण को बार बार भेदा। पहला गोल मुझसे संयोग वश हुआ, लेकिन इंटरवल से पहले मैंने 2 गोल और कर ओलंपिक हॉकी में दूसरी हैट्रिक पूरी की। मैंने पहली हैट्रिक लंदन ओलंपिक में की थी जब मैं भारत के लिए पहली बार खेला था। ब्रिटेन ने 1 गोल कर गोल अंतर को कम जरूर किया, लेकिन वो इतना भर ही कर सके, भारत फाइनल में पहुंच चुका था।
ब्रिटेन के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन के बावजूद हॉलैंड के खिलाफ फाइनल कहीं नजदीक मुकाबला होने वाला था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने 22 जुलाई 1952 के अंक में लिखा,
भारतीय टीम बलबीर सिंह पर कुछ ज्यादा ही निर्भर है, भारत को लगातार अभ्यास करना चाहिए ताकि वो अपने फॉरवर्ड्स की कमियों को दूर कर सके। पंजाब के 28 वर्षीय फॉरवर्ड बलबीर सिंह से ही टीम के सारे हमलों की शुरुआत करने की उम्मीद करना इस खिलाड़ी के साथ ज्यादती होगी।
ये सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई और भारत ने फाइनल में हॉलैंड को 6-1 के टेनिस स्कोर से हराया। टाइम्स ऑफ इंडिया के 24 जुलाई 1952 के अंक में छपा,
विजेताओं ने अपने कौशल और कलात्मकता से डच खेमे में अफरा तफरी फैला दी। उनके बेहतर होने में कोई संदेह नहीं था, खासकर जब सेंटर फॉरवर्ड बलबीर सिंह अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हो। आकर्षक दिखने वाले इस सिख ने 1948 के ओलंपिक फाइनल में भी ब्रिटेन के खिलाफ 2 गोल किए थे। बलबीर ने अपने कप्तान बाबू के साथ मैच विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हुए भारत के लिए 6 में से 5 गोल किए। छठा गोल बाबू के हिस्से में आया।
के रिकॉर्ड हैं जो कि वर्ल्ड ओलंपिक हिस्ट्री में है कि सेमीफाइनल फाइनल में 9 में से 8 गोल और फाइनल में 6 में से 5 गोल। लेकिन मैं इंडिविजुअल खिलाड़ी हूँ, ये टीम गेम है, टीम सारी जब खेलती है तो अच्छा मेरी ड्यूटी थी कि मैं गोल करूँ, वो करता था। कई एक स्ट्राइकर ऐसे होते हैं जो नहीं कर सकते, तो मेरे कुदरती तौर पर या प्रैक्टिस ऐसी थी या मुझे ये पता था कि राइट वक्त पे राइट प्लेस पे जाना है तो गोल हो जाते थे।
ये थे 1952 ओलंपिक खेलों के हीरो बलबीर सिंह। भारत लौटने पर भारतीय हॉकी टीम का जबरदस्त स्वागत हुआ। इस टीम ने शेष भारत की हॉकी टीम के खिलाफ दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एक मैच खेला। मैच देखने वालों में थे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। बाद में बलबीर सिंह ने अपनी आत्मकथा द गोल्डन हैट्रिक में लिखा।
जिस ट्रेन में हम सफर कर रहे थे उसे हॉकी प्रेमियों ने एक तरह से घेर लिया। लोग हमारे कंपार्टमेंट के दोनों ओर खड़े हो जाते और हमारे दर्शन का इंतजार करते। जब हम ट्रेन से उतरते तो वो हमें इतनी जोर से गले लगाते कि हम करीब करीब पिस जाते। जलंधर में पंजाब के चार खिलाड़ियों धर्म, ऊधम, रघबीर और मुझे खुली जीप में एक जुलूस के रूप में ले जाया गया।
हेलसिंकी खेलों में भारतीय टीम की सबसे बड़ी परेशानी थी वहाँ का मौसम। हेलसिंकी ओलंपिक ओलंपिक इतिहास का सबसे गीला और ठंडा ओलंपिक था। 17 डिग्री सेल्सियस का तापमान और बर्फीली हवाएं और बारिश की फुहारें रोजमर्रा की बात थी, लेकिन फाइनल के दिन सूर्य देवता के दर्शन हुए और भारतीय टीम की जीत में उनका भी योगदान रहा। और अब जिक्र हेलसिंकी के एक और हीरो केडी जाधव का, जिन्होंने कुश्ती के बैंटम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। जाधव शुरू से ही अच्छी फॉर्म में थे। उन्होंने मेक्सिको, कनाडा और जर्मनी के पहलवानों को हराया। उनका प्रदर्शन इतना जबरदस्त था कि 22 जुलाई को आखिरी दो कुश्तियां लड़ने से पहले ही उन्हें पदक मिलना तय हो गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने 10 जुलाई 1952 के अंक में लिखा,
आज जाधव रूस के रोशिंद महमेद बेकोव और जापान के शोहाशी शीहो से अंकों के आधार पर हार गए। पूरे मुकाबले के दौरान जाधव आक्रामक रहे। कौशल में तो वो रूसी पहलवान का मुकाबला कर पा रहे थे, लेकिन ताकत में रूसी उन पर भारी पड़ रहा था। पहले राउंड में जाधव ने बेकोव को गिरा तो दिया, लेकिन अपने ऊपर भी नियंत्रण नहीं रख पाए और चित होते होते बचे। इसके बाद बेकोव ने जाधव को लगातार परेशानी में डाले रखा, लेकिन जाधव ने उन्हें खुद को चित करने का मौका नहीं दिया।
दिलचस्प बात यह है कि जाधव को शुरू में भारतीय टीम में चुना ही नहीं गया था। मशहूर खेल इतिहासकार गुलू इज़िकील ने बीबीसी को बताया,
भारतीय कुश्ती की आंतरिक राजनीति इसके लिए जिम्मेदार थी। कुछ राज्य एसोसिएशन अपने पहलवान को टीम में शामिल करवाना चाहती थी। जाधव ने पटियाला के महाराज को पत्र लिखा, जिन्होंने उन्हें टीम में शामिल करवाया। उस जमाने में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ी को अपने टिकट का इंतजाम खुद करना पड़ता था। उनके दोस्तों, पड़ोसियों और कराट के दुकानदारों ने उनकी किट के लिए धन जुटाया। राजाराम कॉलेज के उनके प्रधानाचार्य श्री खाडेकर ने अपना घर गिरवी रख टिकट के लिए जरूरी 7,000 रुपए जोड़े, तब जाकर जाधव हेलसिंकी जा पाए।
हेलसिंकी से वापस आकर जाधव ने पहला काम एक कुश्ती मुकाबले में भाग लेने का किया। उससे जो पैसे मिले उससे उन्होंने अपने प्रिंसिपल का गिरवी रखा हुआ मकान छुड़वाया। उन्होंने अपना पदक अपने मेंटोर के चरणों में रख दिया। वापस लौटने पर जाधव का आधिकारिक स्वागत भले ही जोर शोर से न किया गया हो, लेकिन उनके गांव वालों ने उनको सिर आंखों पर बैठाया। जाधव के चचेरे भाई संपत राव जाधव कहते हैं,
जाधव के सम्मान में 151 बैलगाड़ियों का जुलूस निकाला गया। गोलेश्वर से महादेव मंदिर तक जाने में आमतौर से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन उस दिन ये यात्रा 7 घंटे में पूरी हुई। उन्होंने एक छोटे से गांव गोलेश्वर को राष्ट्रीय नक्शे पर ला खड़ा किया। पूरी दुनिया ने गोलेश्वर को एक ऐसे गांव के रूप में देखा जिसने भारत को पहला ओलंपिक पदक विजेता दिया।
15 जनवरी 1926 को सतारा जिले में गोलेश्वर गांव में जन्मे कश्याप दादा साहेब जाधव ने महज 8 वर्ष की आयु में एक स्थानीय कुश्ती चैंपियन को 2 मिनट में चित कर दिया था। वो पहली बार 1948 के लंदन ओलंपिक में कुश्ती लड़ने गए, जिसका खर्चा कोल्हापुर के महाराजा ने उठाया था। वहां उन्होंने 6ठा स्थान प्राप्त किया। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व महासचिव बीएस लांडगे ने बीबीसी को बताया,
हमेशा मन में एक लगन थी कि मैं जहां भी ओलंपिक में जाऊं तो मैं डेफिनेटली गोल्ड मेडल लाऊंगा। और वो हमेशा वो दिमाग में सोच के वो कुश्ती में काम करते थे और वो बोलते थे कि चाहे कुछ भी मेरे को दिक्कत आए, लेकिन जो मेरे मन में है वो मैं हासिल करके रहूंगा। जो हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, वो उसको कभी इस मेडल के वजह से या कोई अच्छा परफॉर्म देश के लिए नाम कमाने की वजह से उसने कभी उसको कभी बढ़ती ना दी ना कभी, जैसे करतार को हमेशा गोल्ड मेडल या कोई जीत के आए एशियन में कौन मिलते उसको प्रमोशन मिलता गया और उसके घर की चिंता खत्म हो गई। लेकिन इसके तो बेचारा हमेशा इंस्पेक्टर रहा ग्रेजुएट होते हुए भी मेरिट पे है, लेकिन उसको कभी गवर्नमेंट ने उसका ये जो अच्छा उसने परफॉर्मेंस दिखाया उसका उसने कभी ध्यान नहीं दिया।
आइए मिलते हैं जिमनास्ट दीपा कर्माकर से, जो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला जिमनास्ट है। दीपा कर्माकर ने रियो में ही आयोजित जिम्नास्टिक परीक्षण स्पर्धा के क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में 52.698 अंकों के साथ ओलंपिक की कलात्मक यानी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में जगह बनाई। दीपा कर्माकर को रियो का टिकट मिलते ही हमारे सहयोगी विदित मेहरा ने उनसे बातचीत की।
आप पहली भारतीय महिला बनी है जिसने क्वालिफाई कर लिया है, कैसी फीलिंग है और क्या क्या आपको लग रहा है, प्रेशर फील कर रहे हो आप?
नहीं, ऐसे कुछ प्रेशर नहीं है, अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जिमनास्टिक्स के लिए बहुत अच्छा है कि कोई ऐसे एक पोडियम पे पहुंचे।
प्रदनुवा वॉल्ट एक बहुत फेमस वॉल्ट है जो आप करती हैं, और जरा उसके बारे में बताइए, कितने लोग करते हैं पूरे विश्व में प्रदनुवा वॉल्ट?
पूरे वर्ल्ड में ये 5 ही लोग करते हैं सिर्फ, और 5 में से मैं वो तीसरी लड़की हूँ जिसने इस वॉल्ट में लैंड आया। ये वॉल्ट सीखने के लिए मुझे, मैं सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ, पहले तो मेरा कोच है, उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, क्योंकि उन लोगों ने जो फोम पिट बनाया था उसके वजह से मैं ये वॉल्ट सीख पाई। आईजी स्टेडियम में दिल्ली में जो फोम पिट बनाए वो फोम पिट की वजह से मैं सीख पाया, तो उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।
क्या लग रहा था और कोच साहब ने सबसे पहले आपके कान में क्या बोला था?
मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी कि मैं क्वालिफाई कर लिया, और फिर मेरा कोच भी बहुत खुश था क्योंकि मैं वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा दे पाई। मेरा चारों इवेंट में अच्छा गया उस दिन कॉम्पिटिशन, फिर वो सब भारतवासी की पूरा आशीर्वाद से, अपना जिमनास्टिक्स फेडरेशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, त्रिपुरा जिमनास्टिक्स एसोसिएशन, त्रिपुरा गवर्नमेंट, उन सबको मैं बहुत ज्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर उन लोगों के हेल्प के बिना मैं इधर आ ही नहीं पाती।
सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन आपको कौन से देशों से लग रहा है, किन से आपकी भिड़ंत होगी और आपको लगेगा कि कांटे की टक्कर हो सकती है मेरी उनके साथ?
USA, रशिया, चाइना, उन लोगों का है वो सब ओलंपिक में फाइनल पोडियम पे, तो उन लोगों के साथ कंपटीशन।
कौन सी फीमेल एथलीट आपको लगता है कि टक्कर उनसे होगी?
सिमन वाइल्स, मारिया पासिका, गुलिया स्टिनबर्गर, DPR कोरिया एक है, उन लोगों से।
ये थी रियो के लिए क्वालिफाई कर चुकी जिमनास्ट दीपा कर्माकर। चलो रियो में आज इतना ही, अगले हफ्ते इसी समय फिर मिलेंगे। रिहान फदल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
और आपको बता दें कि चलो रियो कार्यक्रम यदि आप दोबारा सुनना चाहते हो तो कल विश्व भारती कार्यक्रम में आप इसे फिर से सुन पाएंगे। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह विश्व भारती कार्यक्रम में होगा। कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनने का वक्त हो चला है।
BBC समाचार। गुजरात के गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 12 दोषियों को 7 वर्ष जबकि एक अन्य दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा हुई है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में प्रशासन ने निषेधाज्ञा लगा दी है और कैराना से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम ने अपने समर्थकों के साथ प्रस्तावित कैराना यात्रा स्थगित कर दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के 50 से ज्यादा अधिकारियों ने एक आंतरिक मेमो पर दस्तखत किए हैं जिसमें सीरिया को लेकर ओबामा प्रशासन की नीति की आलोचना की गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें सीरिया में विपक्ष के एक हिस्से को मौजूदा सरकार में जगह देने की बात कही गई है। मिस्र के जांच अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें पिछले महीने भूमध्य सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुए इजिप्ट एयर विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोरखम सीमा चौकी पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि लड़ाई के कारण सीमा चौकी को बंद कर दिया गया है। इराकी सेना ने कहा है कि उसने फलूजा शहर की प्रमुख इमारतों को इस्लामिक स्टेट के चंगुल से छुड़ा लिया है। फलूजा की प्रमुख सरकारी इमारतों पर इराक का ध्वज फहराया गया है। इसके लिए 3 हफ्तों से लड़ाई जारी थी जो अब खत्म हो गई है। BBC समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। डेढ़ घंटे बाद घटनाचक्र कार्यक्रम लेकर हम फिर से हाजिर होने वाले हैं। तब तक मोहनलाल शर्मा को अपने सभी सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।